समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
आज 2 अक्टूबर का बहुत ही महान दिन है क्योंकि आज ही के दिन जहां भारत के राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्हें महात्मा गांधी या बापू के नाम से भी जाना जाता है, उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। वहीं एक प्रसिद्ध भारतीय राजनेता, महान स्वतंत्रता सेनानी और भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्म 2 अक्टूबर 1904 को हुआ था। संयुक्त राष्ट्र संघ ने कुछ वर्ष पहले एक प्रस्ताव पारित कर दुनिया से ये आग्रह किया कि वो शांति और अहिंसा के विचार पर अमल करे और महात्मा गांधी के जन्मदिवस को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाए। इसीलिए गांधी जी विश्वभर में उनके अहिंसात्मक आंदोलन के लिए जाने जाते हैं और ये दिवस उनके प्रति वैश्विक स्तर पर सम्मान व्यक्त करने के लिए मनाया जाता है। तो 2 अक्टूबर गांधी जयंती और विश्व अहिंसा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है और इसीलिए आधुनिक भारतीय इतिहास में महात्मा गांधी को कृत पुरुष के रूप में भी दर्ज किया गया है।
लाइकवाइज रवि, एवरी ईयर ऑन अक्टूबर द सेकेंड नॉट ओनली गांधी जयंती बट ऑल्सो लाल बहादुर शास्त्री जयंती इज ऑब्जर्व्ड। आवर कंट्री इज फॉर्चुनेट टू हैव वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर्स लाइक हिम एंड अ प्रोमिनेंट लीडर इन द वर्ल्ड। शास्त्री जी क्रिएटेड द पावरफुल स्लोगन जय जवान जय किसान, विच मीन्स हेल द सोल्जर्स एंड फार्मर्स, एंड प्लेड अ स्पेशल रोल इन ग्रीन रेवोल्यूशन एंड White Revolution. Lal Bahadur Shastri was a renowned Indian statesman who battled for our country's independence. He was deeply moved by Gandhi's ideas and resolved to follow in his footsteps. He collaborated with Mahatma Gandhi to advance numerous independence movements.
जी बिल्कुल। और अब एक नए दिन की एक नई सुबह में सुबह के 7:30:41 हो चुके हैं और आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल पर ये समय है न्यूज मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे का। जी हाँ, वही आज सवेरे कार्यक्रम जिसमें होते हैं राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय एवं मेट्रो समाचार, मौसम का हाल, इतिहास के कुछ रोचक पन्ने और समाज के कुछ विशेष महानुभावों की पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन के बारे में जानकारी। तो समाचार पत्रिका आज सवेरे के इस एक नए और खूबसूरत सफर में श्रोताओं के बीच उपस्थित हैं श्रोताओं के ही अपने रवि कपूर और रेणु कटारिया। स्वीकार कीजिए हम दोनों का नमस्कार और आइए अब शुरू करें सिलसिला मुख्य समाचारों का। राष्ट्र आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उनकी 154वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। देश और विदेशों में भारतीय मिशनों द्वारा समारोहों की एक श्रृंखला आयोजित की जा रही है। राष्ट्रीय राजधानी में राजघाट स्थित बापू की समाधि पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने संदेश में कहा है कि महात्मा गांधी के सत्य और अहिंसा के आदर्शों ने दुनिया के लिए एक नया मार्ग प्रशस्त किया। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी ने जीवन भर न केवल अहिंसा के लिए लड़ाई लड़ी बल्कि उन्होंने स्वच्छता, महिला सशक्तिकरण, आत्मनिर्भरता और किसानों के अधिकारों का मुद्दा भी उठाया तथा छुआछूत, सामाजिक भेदभाव और निरक्षरता के खिलाफ भी लड़ाई लड़ी। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि महात्मा गांधी ने सभी को स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए प्रेरित किया और एक बड़े आंदोलन का नेतृत्व किया जिसने इतिहास की दिशा ही बदल दी और हमें आजादी मिली। अपने संदेश में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि महात्मा गांधी के सत्य और अहिंसा के सिद्धांत औपनिवेशिक शासन के खिलाफ स्वतंत्रता के लिए भारत के संघर्ष में मार्गदर्शक थे। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता और समानता के लिए बापू की निरंतर खोज न केवल भारत के लिए बल्कि वैश्विक समुदाय के लिए एक प्रेरणा बनी हुई है। श्री धनखड़ ने लोगों से उनके नक्शे कदम पर चलने और राष्ट्र की प्रगति के लिए आत्मनिर्भरता, समावेशिता और सार्वभौमिक भाईचारे के महात्मा गांधी के दृष्टिकोण को बनाए रखने का प्रयास करने का संकल्प लेने को कहा। देश आज पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को भी उनकी जयंती पर याद कर रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि लाल बहादुर शास्त्री के साहस, सेवा और सादगी को हमेशा याद रखा जाएगा।
Prime Minister Narendra Modi will visit Rajasthan today. He will dedicate to the nation and lay the foundation stone for various development projects worth about Rs 7,000 crores in Chhattisgarh. He will also address a public meeting in Chittorgarh. The Mehsana Bhatinda Gurdaspur gas pipeline will be dedicated by the Prime Minister. The pipeline has been built at a cost of about Rs 4,500 crores. Prime Minister will also dedicate LPG plant of HPCL at Abu Road. This plant will bottle and distribute 86 lakh cylinders per annum. Prime Minister will dedicate a four-lane road on NH12 on the Dara Jhalawar Teendhar section, which has been constructed at a cost of more than Rs 1,480 crores. The railway projects being dedicated to the nation by the Prime Minister include the projects involving doubling of Chittorgarh-Neemuch railway line and Kota-Chittorgarh electrified railway line. Prime Minister will dedicate tourism facilities developed at Nathdwara under Swadesh Darshan scheme.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान और छत्तीसगढ़ में आगामी विधानसभा चुनावों के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों की सूची को अंतिम रूप देने के लिए कल भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक की अध्यक्षता की। पार्टी सूत्रों के अनुसार बैठक में चर्चा उन निर्वाचन क्षेत्रों पर केंद्रित रही जहां राजस्थान में पार्टी की उपस्थिति अपेक्षाकृत कमजोर है। बैठक में राजस्थान और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में कई सांसदों और मंत्रियों को चुनावी मैदान में उतारने की संभावना पर भी विचार विमर्श हुआ। राजस्थान और छत्तीसगढ़ के लिए कोर ग्रुप की बैठक के बाद केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक भाजपा मुख्यालय में हुई। पार्टी सूत्रों के अनुसार राजस्थान में लगभग 60 से 65 सीटों को लेकर चर्चा पूरी हो चुकी है। हालांकि बैठक के दौरान मुख्य जोर उन सीटों पर रहा जहां राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव अपेक्षाकृत कमजोर है। राजस्थान विधानसभा की 200 सीटों में से 65 सीटों पर मंथन हो चुका है, जबकि छत्तीसगढ़ में 69 सीटों पर चर्चा पहले ही हो चुकी है। बैठक में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय संगठन महासचिव बीएल संतोष, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा और भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति के अन्य सदस्य भी उपस्थित थे।
The India Meteorological Department has forecast very heavy rainfall over Bihar, Jharkhand, Odisha and Chhattisgarh today. The weather office has also predicted heavy rainfall over Kerala. Heavy rainfall is also likely over Assam, Meghalaya, Nagaland, Manipur, Mizoram, Tripura and Arunachal Pradesh during the next 3 days. And now, dear listeners, for live updates on Asian Games, it's over to Naveen.
Thank you, Renu. चीन के हांगझोउ में एशियाई खेलों में अब की बार सौ पार का लक्ष्य लेकर उतरे भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी है। और अब से कुछ देर पहले रोलर स्केटिंग में 3000 मीटर रिले रेस में संजना, कर्तिका, हीरल और आरती की चौकड़ी ने कांस्य पदक जीत लिया है। और इसके साथ ही भारत के जो कुल पदकों की संख्या है वो 54 हो गई है। भारत ने 13 स्वर्ण, 21 रजत और 20 कांस्य पदक जीत लिए हैं और चौथे स्थान पर बना हुआ है। इससे पहले रेणु, कल 8वें दिन भारत ने एक दिन में 3 स्वर्ण, 7 रजत और 5 कांस्य पदक जीते, यानी कुल 15 पदक जीते। और इसके साथ ही एक दिन में इतने ज्यादा पदक जीतने का 13 साल पुराना रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। इससे पहले 2010 में ग्वांगझोउ एशियाई खेलों में भारत ने 14वें दिन 11 पदक जीते थे। और इसके साथ ही भारत ने कल पदकों का अर्धशतक भी पूरा कर लिया। और अगर आज की बात करें रवि, तो 9वें दिन आज टेबल टेनिस में महिलाओं में सुधीरता मुखर्जी और अहिका मुखर्जी की भारतीय जोड़ी सेमीफाइनल में उत्तर कोरिया के साथ खेलेगी सेमीफाइनल में कोरिया के साथ खेलेगी। और कबड्डी में आज भारत अपने अभियान की शुरुआत करेगा। महिला टीम अपने पहले ग्रुप मुकाबले में चीनी ताइपे के साथ मुकाबला करेगी। ट्रैक एंड फील्ड प्रतियोगिता में खिलाड़ी 9 पदकों के लिए आज अपनी चुनौती पेश कर रहे हैं। पुरुषों की 200 मीटर दौड़ में अम्लान बोरगोहेन और मिक्स्ड 400 मीटर भारतीय चौकड़ी जो है वो अपने मैदान में उतरेगी। बैडमिंटन की बात करें तो व्यक्तिगत स्पर्धाएं आज से शुरू हो रखी हैं। किदाम्बी श्रीकांत, एचएस प्रणय, पीवी सिंधु आज अपने मुकाबले खेलेंगे। और आज ही घुड़सवारी, कैनोइंग, रोलर स्केटिंग, कुराश और तैराकी स्पर्धाओं में भी भारतीय खिलाड़ी पदक जीतने की कोशिश करेंगे। और आज दिन के अंत में पुरुष हॉकी टीम है वो अपने ग्रुप स्टेज के आखिरी मैच में बांग्लादेश के साथ खेलेगी। तो ये अब तक की एकदम लेटेस्ट खबरें थी क्या कुछ चल रहा है एशियाई खेलों में। अब वापस चलते हैं रवि और रेणु के पास।
बहुत शुक्रिया नवीन इतनी अच्छी खेलों की जानकारी देने के लिए। तो ये थे अब तक के कुछ मुख्य समाचार। और अब चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद के समाचारों की जानकारी देंगी रेनु कटारिया।
थैंक यू रवि। द थंबराम म्युनिसिपल कॉरपोरेशन कंडक्टेड अ क्लीनलीनेस ड्राइव इन पब्लिक स्पेसेस, पार्क्स, बस स्टॉप्स, हॉस्पिटल्स, मार्केट्स एंड रोड्स अक्रॉस इट्स 70 वार्ड्स। मेयर वसंता कुमारी अकंपनीड बाय म्युनिसिपल स्टाफ एंड वॉलंटियर्स इनिशिएटेड द क्लीनअप एफर्ट इन थंबराम सेनेटोरियम। दिस मूव फॉलोज अ डेंगू ब्रेक इन ओल्ड पल्लवरम, प्रॉम्प्टिंग कॉरपोरेशन कमिश्नर आर अलुगमीना टू इंस्पेक्ट मॉस्किटो कंट्रोल एफर्ट्स in the area. Around 2,237 sanitation workers and 4,523 volunteers used 425 vehicles for the drive. At least 110 metric tons of solid waste were removed during the drive. The mayor also urged residents to refrain from littering public areas and encourage the separation of garbage into dry and wet waste during the cleanup. Ravi, this was from Chennai Metro. Yes. Now moving on to Bengaluru Metro. The Karnataka Governor Thavarchand Gehlot flagged off 69th Wildlife Week Vintage Vehicle Drive for Wildlife Conservation at Raj Bhavan in Bengaluru yesterday. In his address, Governor Gehlot underscored the long-standing discourse on safeguarding and preservation of animals enshrined in ancient scriptures. Recognizing the enduring coexistence of humans and wildlife, he emphasized the pressing need for the conservation of these invaluable species, underscoring the pivotal role of thriving forests in this endeavor. The Karnataka Forest Department collaborated with the Federation of Historic Vehicles of India to orchestrate a landmark vintage vehicle drive. This historic convoy, comprised of meticulously preserved cars and motorcycles, serves as a poignant signal of symbol of dedication to wildlife conservation. Karnataka Forest Minister Ishwar Khandre, President of the Historic Vehicles Association of India Ravi Prakash, and DCF Shri Prabhakar Priyadarshi were present on this occasion. And the last news that I have from is Hyderabad Metro. In Hyderabad, the country's first solar roof cycling track has been inaugurated by State Municipal Administration and Urban Development Minister K. Tarak Ramarao yesterday. This innovative track, named as Healthway, is the second of its kind globally. Located on the outer ring road between the main carriageway and service track, the track will be open 24/7, giving a major push to the dedicated bicycling community in the city. It is also a vital step in the direction of making Hyderabad an active mobility capital of the country. Speaking after inaugurating the track, the minister revealed plans to set up a similar track in other areas, including around the Gandipet Lake and in the financial district. The 23-kilometer path has two stretches. It is a three-lane track that is 4.5 meters wide with 1 meter of green space on either side in a bid to make it easier for visitors, bicycle repair shops, along with cycle docking and rental stations and other services will also be made available. Moving on to Ravi, what do we have from Delhi, Mumbai and Kolkata metros?
Renu, mere paas bhi Rajdhani Delhi, Mumbai aur Kolkata se bahut se samachar hain. Shuruaat Delhi se hi kar lete hain. Pradhanmantri Narendra Modi ke 1 tarikh 1 ghanta 1 saath ke aahwan par kal Delhi Nagar Nigam ne subah 10 baje se 11 baje tak shramdan yani vishesh safai abhiyan aayojit kiya. इस दौरान सांसद, विधायक, क्षेत्रीय पार्षद, आरडब्ल्यूए, बाजार और व्यापार संघ, स्कूल और कॉलेज के छात्र के साथ साथ कई अन्य लोगों ने भी श्रमदान में भाग लिया। दिल्ली में 500 से अधिक स्थानों पर स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत लोगों ने श्रमदान किया। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने शाहदरा दक्षिण क्षेत्र में श्रमदान में भाग लिया। इस महाअभियान के अंतर्गत दिल्ली नगर निगम के सभी 12 जोनों और सभी स्कूलों, अस्पतालों और अन्य प्रतिष्ठानों में विभिन्न स्वच्छता गतिविधियां आयोजित की गई हैं। निगम के सभी स्कूलों के प्रधानाचार्यों, शिक्षकों और सफाई कर्मचारियों ने भी स्कूलों को साफ और स्वच्छ बनाने के लिए स्कूल परिसर के अंदर श्रमदान में भाग लिया। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं मुंबई की ओर। खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने कल मुंबई के जुहू बीच पर स्वच्छता अभियान का आयोजन किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि केंद्रीय सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम मंत्री नारायण राणे ने कहा कि स्वच्छता के महत्व पर महात्मा गांधी की शिक्षाओं के अनुरूप इस अभियान का उद्देश्य स्वस्थ और स्वच्छ वातावरण बनाए रखने के प्रति नागरिकों की कर्तव्य भावना को प्रेरित करना है। उन्होंने गांधी जी का हवाला देते हुए कहा कि स्वच्छता राजनीतिक स्वतंत्रता से अधिक महत्वपूर्ण है। उधर भारत सरकार के संचार मंत्रालय के संचार लेखा नियंत्रक सीसीए महाराष्ट्र और गोवा कार्यालय ने भी कल जुहू बीच पर पदयात्रा और स्वच्छता अभियान का आयोजन किया। ये कार्यक्रम स्वच्छता ही सेवा अभियान के अंतर्गत आयोजित किया गया था और इसमें नियंत्रक कार्यालय के सभी अधिकारियों की उत्साहपूर्ण भागीदारी देखी गई। इसी तरह का एक स्वच्छता कार्यक्रम ओएनजीसी मुंबई ने भी बांद्रा रिक्लेमेशन गार्डन में आयोजित किया। चलते हैं कोलकाता की ओर। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल डॉ सीवी आनंद बोस को कल पश्चिम बंगाल के 6 विश्वविद्यालयों में अस्थायी उप प्राचार्य नियुक्त किया गया। ये विश्वविद्यालय हैं मुर्शिदाबाद विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी विश्वविद्यालय, कूच बिहार पंचानन वर्मा विश्वविद्यालय, अलीपुर द्वार विश्वविद्यालय, बिस्वो बांग्ला विश्वविद्यालय और उत्तर बंगाल विश्वविद्यालय। इस संबंध में राजभवन की ओर से एक विज्ञप्ति जारी की गई है। नॉर्थ बंगाल यूनिवर्सिटी में राज्यपाल ने एक सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी की नियुक्ति भी की है। तो ये थे अब तक के कुछ मेट्रो समाचार। आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर श्रोता सुन रहे हैं कार्यक्रम आज सवेरे रवि और रेणु के साथ और कार्यक्रम आज सवेरे में अब बात मौसम की। तो मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान आसमान साफ रहने की संभावना है। वहीं न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। मुंबई में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और हल्की वर्षा की भी संभावना है। न्यूनतम तापमान 24 और अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। कोलकाता में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और हल्की वर्षा या गरज के साथ वर्षा का भी अनुमान लगाया गया है। न्यूनतम तापमान 26 और अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। रेणु
And Chennai is expected to have rain or thunder showers that would occur towards evening or night. The minimum temperature would be 26 degrees Celsius and the maximum will be around 36 degrees. Bengaluru is expected to have a generally cloudy sky with light rain. The minimum temperature would be 21 degrees Celsius and the maximum will be around 29 degrees. And Hyderabad is also expected to have a generally cloudy sky with one or two spells of rain or thunder showers. The temperature will hover between a minimum of 23 degrees and a maximum of 30 degrees Celsius.
और आइए अब सुनते हैं रोचक घटनाओं का कार्यक्रम दुनिया रंग बिरंगी।
दुनिया रंग बिरंगी सुनने वाले सभी दोस्तों का इस कार्यक्रम में स्वागत है। आज एक बार फिर हम आपके लिए लेकर आए हैं रोचक और सतरंगी जानकारियां। दोस्तों, आज गांधी जयंती है। उनकी अवधारणा की नींव संपूर्ण अहिंसा के सिद्धांत पर रखी गई थी। गांधी जयंती के दिन को पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। महात्मा गांधी कहते हैं, अहिंसा मेरी पुस्तक का पहला लेख है और पुस्तक का आखिरी लेख भी यही है।
ऐनक पहने लाठी पकड़े चलते थे वो शान से, सालिम कांपे थर 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 सुनकर उनका नाम रे। हो पर था उनका छोटा सा और सरपट उनकी चाल रे, दुबले से पतले से थे वो चलते थी ना तान गे।
दोस्तों, ब्रिटेन में 70 साल की महिला की लॉटरी लगी है। इसमें उन्हें अगले 30 साल तक हर महीने 10,34,000 रुपए मिलेंगे। लॉटरी मिलने के बाद डोरिस स्टैनब्रिज ने कहा कि अब वे अपने पति के साथ खुद को रिटायर करने की सोच रही हैं।
अरे हाँ, आगे आगे वो चले पीछे सारी दुनिया, दिन न देखे रात न देखे पीछे पड़ी है दुनिया, आगे आगे वो चले पीछे सारी दुनिया, दिन न देखे रात न देखे पीछे पड़ी है दुनिया, और नहीं
रुपया।
ओडिशा के केंद्रपाड़ा के भीतर कनिका राष्ट्रीय उद्यान में इस वर्ष मॉनसून पक्षी गणना के दौरान गणना टीमों द्वारा अनुमानित 1,23,867 मॉनसून पक्षी और 26,118 घोंसले देखे गए। उद्यान के सूत्रों ने बताया कि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष 1,654 अधिक घोंसलों की सूचना मिली है। मॉनसून पक्षी गणना 3 सितंबर से 8 सितंबर तक उद्यान के अंदर और बाहर 4 स्थानों पर की गई थी। दोस्तों, सोनबरसा के किसानों को सूखे की मार नहीं झेलनी पड़ेगी। सोनबरसा के पुरंदाहर रजवाड़ा के किसानों ने श्रमदान व चंदा से अधवारा समूह की झीम नदी पर 375 फीट लंबा व 16 फीट चौड़ा अस्थायी बांध बनाया है। इससे इनके खेतों की सिंचाई हो सकेगी। क्षेत्र के 8 गांवों के 600 से अधिक किसानों की 300 हेक्टेयर से अधिक धान की फसल की सिंचाई हो सकेगी। इस बार खरीफ के मौसम में बारिश की कमी के कारण धान के खेतों में दरार पड़ने लगी थी। इसे देखते हुए किसानों ने नहर से सिंचाई का संकल्प लिया।
मेरे देश में हो, मेरे देश में, मेरे देश में पवन चले पुरवाई हो, मेरे देश में, मेरे देश को देखने भाई सारी दुनिया आई, मेरे देश में हो, मेरे देश में पवन चले पुरवाई हो, मेरे देश में।
इस कार्यक्रम को लेकर कोई सुझाव या रोचक खबर हमसे साझा करने के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है duniyarangbirangi10@gmail.com। कार्यक्रम दुनिया रंग बिरंगी आज यहीं संपन्न करने की अनुमति दीजिए। नमस्कार।
तो ये था रोचक घटनाओं का कार्यक्रम दुनिया रंग बिरंगी। आलेख और स्वर मनोज का था। और रेनु, अब समय हो गया है इतिहास के पन्नों को पलटने का। तो क्या है आपके पास जानकारी?
सो ऑन दिस डे, दैट इज 2nd of October इन 1929, महात्मा गांधी मेड द नव जीवन पब्लिकेशन अ चैरिटेबल ट्रस्ट, एंड इन 1934 ऑन द सेम डे इंडियन नेवल फोर्स वॉज एस्टैब्लिश्ड।
1961 में आज के दिन मुंबई में शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का गठन हुआ। और 1971 में आज के दिन तत्कालीन राष्ट्रपति वीवी गिरी ने गांधी सदन के नाम से प्रसिद्ध बिरला हाउस देश को समर्पित किया।
एंड ऑन 2nd of October 1972 ब्रॉडकास्टिंग ऑफ मुंबई दूरदर्शन स्टार्टेड।
और 1985 में आज के दिन दहेज निषेधाज्ञा संशोधन अधिनियम अस्तित्व में आया। और अब समय हो गया है कुछ प्रमुख व्यक्तियों की पुण्यतिथियों और जयंतियों या जन्मदिन के बारे में जानकारी देने का। तो पुण्यतिथियों में आज सबसे पहला नाम है भारत के विख्यात चित्रकार राजा रवि वर्मा का, जिनका जन्म तो हुआ था 29 अप्रैल 1848 को, लेकिन निधन हुआ 2 अक्टूबर 1906 को। उन्होंने भारतीय साहित्य और संस्कृति के पात्रों का चित्रण किया। उनके चित्रों की सबसे बड़ी विशेषता हिंदू महाकाव्यों और धर्म ग्रंथों पर बनाए गए चित्र हैं। हिंदू मिथकों का बहुत ही प्रभावशाली इस्तेमाल उनके चित्रों में दिखता है।
ऑन द एनिवर्सरी ऑफ व्हाट वुड बी हिज 150th बर्थडे, गूगल आर्ट्स एंड कल्चर रिलीज ओवर 300 वर्क्स ऑनलाइन फॉर एवरीवन टू व्यू, एंड सम ऑफ द प्रोमिनेंट वर्क्स ऑफ राजा रवि वर्मा आर मोहिनी प्लेइंग विद अ बॉल, यशोदा एंड कृष्णा, विलेज बेले, लेडी लॉस्ट इन थॉट एंड सो मेनी मोर अदर्स रवि।
और अपने श्रोताओं को आप जानकारी देते हैं भारत रत्न के कामराज अथवा कुमारस्वामी कामराज के बारे में, जो दक्षिण भारत के बहुत बड़े राजनेता तो थे ही, साथ ही बाद में वे नाडर जाति से उठकर तत्कालीन मद्रास और बाद में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष भी बने। आपका जन्म हुआ था 15 जुलाई 1903 को और निधन 2 अक्टूबर 1975 को। और जयंतियों का समय हो गया है। तो जयंतियों में आज रेनू आपके पास क्या जानकारी?
यस, आई हैव स्टिंग गॉर्डन मैथ्यूज थॉमस सुमनर सीबीई बॉर्न 2 अक्टूबर 1951 नोन एज स्टिंग इज एन इंग्लिश म्यूजिशियन एंड एक्टर. ही वॉज द फ्रंट मैन सॉन्ग राइटर एंड बेसिस फॉर न्यू वेव बैंड द पुलिस फ्रॉम 1977 अंटिल द ब्रेकअप इन 1986. He launched a solo career in 1985 and has included elements of rock, jazz, reggae, classical, new age and world beat in his music. So let's listen into this beautiful song sung by Sting.
जयंतियों में अगला नाम है बांग्ला एवं हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध निर्देशक दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित तपन सिन्हा का, जिनका इस दुनिया में अवतरण आज ही के दिन यानी 2 अक्टूबर 1924 को हुआ था. इन्हें 2006 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी मिला था. तपन सिन्हा की फिल्में भारत के अलावा बर्लिन, वेनिस, लंदन, मॉस्को जैसी अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में भी सराही गईं. भारत का पहला लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार तपन सिन्हा को ही दिया गया था. अंकुश, काबुलीवाला, उपहार, जिंदगी जिंदगी, सफेद हादी आदि उनके कुछ प्रमुख फिल्मों के नाम है. जन्मदिन है हिंदी फिल्मों की प्रसिद्ध अभिनेत्री, निर्देशक और निर्माता और दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित आशा पारेख का, जिनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1942 महुआ गुजरात में. वे 1959 से 1973 तक हिंदी फिल्मों के शीर्ष अभिनेत्रियों में से एक रही हैं. 1952 की फिल्म आसमान में एक बाल कलाकार की भूमिका से अपने फिल्मी करियर को शुरू करने वाली और 60 के दशक में अपनी अभिनय प्रतिभा से सभी को अचंभित कर देने वाली अभिनेत्री आशा पारेख ने शमी कपूर, शशि कपूर, धर्मेंद्र, देवानंद, अशोक कुमार, सुनील दत्त और राजेश खन्ना जैसे मंजे हुए कलाकारों के साथ बहुत काम किया. अपने लंबे फिल्मी कैरियर में आशा पारेख ने विभिन्न भूमिकाएं निभाई. संजीदा अभिनेत्री के तौर पर अपनी एक अलग पहचान बनाने वाली आशा पारेख को शास्त्रीय नृत्य में भी दक्षता प्राप्त है और उनकी कुछ अभिनीत यादगार फिल्में हैं लव इन टोक्यो, फिर वही दिल लाया हूं, कन्यादान, आन मिलो सजना, तीसरी मंजिल, कटी पतंग, मेरा गांव मेरा देश, आया सावन, झूमके, उपकार, मैं तुलसी तेरे आंगन की, मौसम, बिन फेरे हम तेरे आदि. चलते चलते आज का विचार कि अमीर इतने बनो कि आप कितनी भी कीमती चीज को जब चाहे खरीद सको और कीमती इतने बनो कि कोई भी अमीर व्यक्ति आपको ना खरीद सके. इसी विचार के साथ इजाजत दीजिए रवि कपूर और रेनू कटारिया को आज सवेरे कार्यक्रम यहीं संपन्न करने की.
बट स्टे ट्यून फॉर कमिंग अप नेक्स्ट समाचार प्रभात और हिंदी न्यूज बुलेटिन फॉलोड बाय मॉर्निंग न्यूज इन इंग्लिश एट 8:15 AM. थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन. हैव अ ग्रेट डे. नमस्कार.